الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم مجھ پر کثرت سے درود پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات مدنی چینل کے ساتھ یو آر واچنگ این انٹرسٹنگ پروگرام، سلسلہ دیکھ رہے ہیں آپ مدنی چینل پر صحت کے راز۔ مدنی چینل کے ناظرین، مشاہدہ یہی ہے کہ رمضان المبارک میں عبادت کا ذوق شوق بڑھ جاتا ہے۔ مختلف قسم کے آپ سلسلے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ گلدستے میں سجے ہر پھول کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے، اپنی خوشبو ہوتی ہے، اور گلدستے میں یہ سارے پھولوں کا یکجا ہونا ہی اس گلدستے کی اوریجنل بیوٹی ہوتی ہے۔ اسی طرح مدنی چینل کا ہر سلسلہ الحمدللہ اپنی نوعیت میں ایک بے مثال حیثیت رکھتا ہے۔ بہت ہی زبردست انداز سے علم دین سیکھنے کو ملتا ہے، اور الحمدللہ ڈفرنٹ ٹاپکس کے ساتھ، ڈفرنٹ تھیم کے ساتھ، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ صحت کے راز، دا سیکرٹ آف ہیلتھ۔ اور آج کا ٹاپک کیا ہوگا، کون سا راز ہے جس سے ہم پردہ اٹھانے جا رہے ہیں؟ لیٹس چیک دا باکس۔ آئیے ڈبے میں دیکھتے ہیں کیا ہے۔ جی ہاں، فطری انداز زندگی، نیچرل وے آف لائف، اینڈ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو کوریلیٹ دس ٹاپک ود ہیلتھ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ صحت کا راز کیسے بنتا ہے آگے اپنے سلسلے میں۔ یہاں میں سب سے پہلے مدنی چینل کے ناظرین آپ سرچ کرتا چلوں کہ روزہ رکھنا ایک بالکل فطری انداز زندگی ہے۔ ریمبر، اٹس ناٹ سٹارویشن، اٹس ول فل ایبسٹیننس۔ یہ کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ ہم کھا پی نہیں سکتے، کھانا ہے ہی نہیں، ختم ہو گیا کھانا، پانی نہیں ہے، پانی کے لیے 6-6 کلومیٹر دور جانا پڑ رہا ہے، تو پیسے اور اشیاء کا کوئی فقدان آ گیا ہے، تو اس صورت کے اندر فاقے کی مطلب ایک حالت بن گئی ہے، نہیں، بلکہ اٹس ول فل ایبسٹیننس۔ اپنی مرضی سے تمام وسائل کے ہوتے ہوئے ایک خاص مدت کے لیے کھانا پینا، اس کو چھوڑ دینا، ایک پریکٹس ہے، عبادت ہے، فقط رب کی رضا کی خاطر، اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے۔ اینڈ اٹس 100% نیچرل وے آف لائف۔ روزہ رکھنا یہ بالکل ایک فطری انداز ہے۔ ریمبر، one of the meanings of natural way of life is to be on the normal and regular track۔ یہ بات یاد رکھیے کہ فطری انداز زندگی کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ نارمل ٹریک پر ہوں، یعنی اس کا مطلب یوں سمجھیے کہ ایک انسان وہ صحت مند ہے، اس کی زندگی گزر رہی ہے، اس کو کھانسی بھی نہیں ہے، بخار بھی نہیں ہے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، نارمل ٹریک پر اس کی زندگی ریگولر انداز سے گزر رہی ہے۔ اب وہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کی زندگی نارمل ٹریک سے ہٹ گئی، کیا کرے گا؟ دوائی لے گا، پرہیز کرے گا، ڈاکٹر وزٹ کرے گا، اللہ نے شفا دی تو دوبارہ اس کی زندگی ریگولر ٹریک پر آ جائے گی۔ اب یہ جو فزیشنز ہوتے ہیں، ہم نے ایک بڑے لیڈنگ فزیشن سے، ڈاکٹر سے بات کی، اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ اور میڈیسنز آر ڈوئنگ نتھنگ بٹ سپورٹنگ دا امپیکیبل پاور آف ہیومینٹی، امیونٹی ان سائڈ دا ہیومن بینگ۔ ہماری دوائیاں کچھ نہیں کر رہی ہوتی، ہمارا پرہیز کچھ نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ جسم کے اندر جو قوت مدافعت پہلے سے موجود ہے، جو دفاعی نظام اللہ نے عطا کیا ہے، اسی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہم، اور وہی دفاعی نظام جراثیم کو کک آؤٹ کر دیتا ہے۔ تو ہاتھ ٹوٹ جائے، کسی کا آپ نے نوٹ کیا ہوگا، اس کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو راڈ ڈلتی ہے، ڈاکٹر آپریشن کر کے اس کی ہڈی کو درست کرتے ہیں تاکہ ہاتھ دوبارہ سے اسی طرح کام کرنے لگ جائے جس طرح ایک انسان کا ہاتھ کام کرتا ہے۔ اس کا مطلب فطری انداز زندگی کا مطلب یہ ہوا، ریگولر کورس آف ایکشن، جو کام انسان ریگولر لائف میں کرتا جا رہا ہوتا ہے۔ تو روزہ رکھنا بالکل جو ہے وہ ایک ریگولر لائف سٹائل ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب اپنی شعرا فاق کتاب فیضان سنت کے باب فیضان رمضان کے 106 نمبر صفحے پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں۔ سید المحبوبین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ واٹ اے ریمارکیبل سینگ، ماسٹر پیس ورڈز، ا ٹیکسٹ ود نو میچ۔ اتنی بہترین لائن ہے یہ، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. سبحان اللہ سبحان. روزہ رکھنے کے بے شمار میڈیکل بینیفٹس ہیں. ایز پر لیٹسٹ ماڈرن ریسرچ لیٹس ڈسکس سم لنچ پن بینیفٹس آف فاسٹنگ. آئیے روزہ رکھنے کے طبی فوائد پر جدید تحقیق سنتے ہیں. ان میڈیکل ٹرمینالوجی فاسٹنگ مینز ریفرینگ فرام ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ ایٹ یور اون ول فار اے ڈیفینیٹ اسپین آف ٹائم. خاص مدت کے لیے اپنی مرضی سے کھانے پینے سے رکے رہنا اس کو روزہ کہا جاتا ہے. اب اس عمل سے جس میں تبدیلیاں کیا آتی ہیں غور سے سنیے گا, بہت یہ امپورٹنٹ چیز ہے. آخری کھانا روزے میں کیا کھایا ہوتا ہے؟ سحری کا. اب دیکھیے جسم کو طاقت اور توانائی چاہیے, جو آخری کھانا سحری کا آپ نے کھایا اس سے جسم توانائی حاصل کرے گا, لیکن پھر وہ توانائی ختم ہو جائے گی. اب جسم کو مزید توانائی چاہیے, لیکن آپ تو کھانا نہیں کھا رہے کیونکہ روزہ رکھا ہوا ہے. اب توانائی کہاں سے آئے گی؟ اب جگر کے اندر اور پٹھوں میں سٹوریج میکنزم ہوتا ہے, گودام بنے ہوئے ہیں جگر میں اور پٹھوں میں, گودام بنے ہوتے ہیں توانائی کے. جسم وہاں سے توانائی حاصل کرتا ہے, اور جب وہ بھی حاصل کر لیتا ہے اب جسم کو اور توانائی چاہیے, لیکن کھانا بھی نہیں کھا رہے, پٹھوں سے بھی توانائی لے لی. اب جسم میں جو زائد چربی ہے, فیٹس ہیں, انسیسری فیٹس ہیں, وہ گھلتی ہیں اور جسم وہاں سے توانائی حاصل کرتا ہے. اور اس طریقے سے یہ ایکومولیٹڈ فیٹس, یہ جو چربی ہے, اس کا اتنا فائدہ ہوتا ہے, یہ گھلتی ہے, ڈی ٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے, گندے مادے جسم سے نکلتے ہیں, اور بہت سے ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو سائیکولوجیکل فنکشنز سر انجام دیتے ہیں. اور یہ بھی تجربے سے بات ثابت ہوئی کہ جو روزہ رکھتے ہیں نا, بھوکا رہتے ہیں, ان کا انڈورفن لیول بڑھ جاتا ہے, دماغ کے اندر جو ذہنی صلاحیت بڑھاتے ہیں, میموری تیز ہو جاتی ہے, یادداشت تیز ہو جاتی ہے. اسی طرح ریمٹائڈ آرتھرائٹس, جوڑوں کی سوجن میں بھی اس کے اندر فائدہ ہوتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین, یہ ایک اور ریسرچ ہے, انڈر ابھی کنسیڈریشن ہے, لیکن اس ریسرچ کے مطابق کینسر سے بھی روزے میں فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ کینسر کے جو سیلز ہوتے ہیں, کینسر کے جو خلیے ہوتے ہیں, وہ تیزی سے بڑھ رہے ہوتے ہیں, ایک سے دو, دو سے چار, چار سے آٹھ. یہ بڑھنے کی رفتار جو ہے روزہ جب انسان رکھتا ہے تو یہ کم ہو جاتی, کیونکہ ان گندے خلیوں کو طاقت نہیں مل رہی ہوتی کھانے کی صورت میں. اور پھر دیکھیے, سارا سال انسان کھانا کھاتا ہے, اس کے پیٹ میں کھانا جاتا ہے, پیٹ کے اندر کھانے نے ایک پروسیس ہوتا ہے ڈائجیشن کا, مختلف قسم کے انزائمز آتے ہیں, تو یہ پیٹ مسلسل کام کرتا رہتا ہے, اس کو تھوڑا ریسٹ چاہیے ہوتا ہے. اور جب روزے میں پیٹ کو ریسٹ مل جاتا ہے تو جسم میں اور کئی کام جو ہونے تھے نہیں ہو پا رہے ہوتے, وہ کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جس طرح اگر گھر میں ایک جگہ پر آپ کی توجہ فوکس ہو جائے, آپ اسی چیز کو دیکھتے جائیں, اسی چیز پر آپ توجہ رکھیں, تو باقی چیزوں سے توجہ ہٹ جاتی ہے. اگر وہ خاص کام ہو جائے, باقی کاموں کی طرف آپ کی توجہ ہو جائے گی, ایسا ہوتا ہے نا. تو اب اہم ترین کام ہے کھانا کھانا, پیٹ کا مصروف رہنا, پیٹ تو خالی ہے اب, تو یہ کام تو ہونا نہیں, تو دماغ دیگر کاموں کی طرف اپنی توجہ کر لیتا ہے. فیضان سنت میرے شیخ طریقت کی شعرہ فاق کتاب ہے, اس کے باب فیضان رمضان کے صفحہ نمبر 939 پر ہے. روزے سے صحت ملتی ہے. امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی, اللہ کے پیارے رسول, رسول مقبول بی بی آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے. بے شک اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بھی میرا بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت بھی عطا فرماتا ہوں اور اس کو عظیم اجر بھی دوں گا. میری بیٹے سائیں بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, روزہ ایک فطری انداز زندگی ہے, روزہ ایک فطری انداز زندگی ہے. ایک انڈسٹری میں مشینیں سارا سال کام کرتی رہتی ہیں, صبح دوپہر شام کی شفٹیں چلتی ہیں, اس مشین کو بھی ریسٹ دیا جاتا ہے, شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے ایک ہفتے کے لیے, 15 دن کے لیے, اس مشین کو صفائی ہوتی ہے, اس مشین کے پرزے تبدیل کرتے ہیں. سو اور باڈی از ورکنگ لائک اے مشین, اٹ آلسو نیڈز ریسٹ, اینڈ ریسٹ ول بی ان دا فارم آف فاسٹنگ. فاسٹنگ کی صورت میں اس جسم کو ریسٹ ملتا ہے. لیکن فطری انداز زندگی اختیار کریں, خوب خوب نہ کھائیں. ایسا نہ کریں کہ افطاری پر ایک تہ کھانے کی چڑھائی, پھر اس کے بعد افطاری کے بعد, وہ تو افطاری تھی, کھانا تھوڑی تھا, پھر رات کا کھانا بھی کھایا, और अब रात का खाना खाने के बाद सहरी और रात के खाने के दरमियान में भी कुछ उठके खाया और फिर सहरी भी खाई, अब इतनी तहें चढ़ाएंगे तो फिर डिजायरेबल आउटकम्स तो नहीं ना आएंगी, तो फायदा नहीं होगा बल्कि उल्टा नुकसान होगा। फैजान रमजान जारी रहेगा इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल, और रोजे भी रखते रहेंगे खूब खूब, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सबको इस्तकामत दे। तो फितरी अंदाजे जिंदगी मेरे मीठे साईं भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन हमारी सेहत का राज है। यहां मैं एक पॉइंट क्लियर करता चलूं, निगरान शुरा हाजी इमरान अतारी साहब हमारी रहनुमाई फरमाते हैं कि फितरी अंदाजे जिंदगी से मुराद पुराना या नया अंदाजे जिंदगी नहीं है। जैसे नाम से थोड़ा शुबा होता है, फितरी अंदाजे जिंदगी से क्या मुराद होगा कि छत के ऊपर जो है वो चारपाई डाल के ताजा हवा में हम सो रहे हैं और गांव का माहौल है, खेत खलियान है, लस्सी है, बाजरे की रोटी है, साग है। फितरी अंदाजे जिंदगी से मुराद 100% ये नहीं है। फितरी अंदाजे जिंदगी से मुराद एतदाल है, बैलेंस है, म्याना रवि है, नो इंक्रीज नो डिक्रीज बट बैलेंस, बैलेंस्ड अप्रोच। आज जदीद दौर में इतनी इजादात जो हुई है इनका इंसान को फायदा ही है। जो सहूलियात आज 2019 में एक आम आदमी को मुयस्सर हैं, बताइए क्या 200 साल पहले एक अमीर तरीन आदमी को मुयस्सर थी? नहीं थी। आज एक आम आदमी कैसी कैसी इजादात लेकर जा रहा है, 200 साल पहले तो एक अमीर तरीन आदमी भी नहीं सोच सकता था कि उसके पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी होगी। अब पैदल चलना अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन किसी का दफ्तर ही अगर 12 किलोमीटर दूर है तो बेचारा रोज पैदल चलेगा कैसे इतना? इट मींस दैट द यूज ऑफ ए व्हीकल, यूज ऑफ ए कार, यूज ऑफ ए बस विल बी यूजफुल। जदीद इजादात का फायदा तो है, और राबते के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल जदीद है, अच्छा जरिया है, मोबाइल फोन के जरिए बहुत से नेकी के काम भी होते हैं, लेकिन एतदाल के साथ सही और मुस्बत अंदाज से इस्तेमाल करते हुए, शरई तकाजों को मद्देनजर रखते हुए हमें जदीद तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। सो व्हाट वी हैव कंक्लूडेड दैट नेचुरल वे ऑफ लाइफ इज एक्चुअली अ बैलेंस्ड वे ऑफ लाइफ, कि फितरी अंदाजे जिंदगी दर हकीकत वो बैलेंस्ड वे ऑफ लाइफ है, ना कि कोई जदीद या पुराना काम हो बल्कि मुतवाजन हो, बैलेंस्ड हो। मोबाइल फोन के इस्तेमाल की वजह से अगर खुदकुशियां बढ़ जाए, कत्ल बढ़ जाए, एक्सीडेंट बढ़ जाए, और फास्ट फूड और आराम तलब जिंदगी की वजह से हार्ट अटैक होने शुरू हो जाए, फालिज होना शुरू हो जाए, तो फिर जारी बात है ये चीज फिर गलत होगी, ये तदाल के अलावा बात है। मशीन 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 मशीन, आज इस कदर इज्जत होगी मशीन की कि इंसान सीढ़ियां चढ़ना ही भूल जाए, लिफ्ट के जरिए ऊपर जाए, खुद कार मशीनों के जरिए ऊपर जाए, तो दैट विल बी बैड। तो सेहत का राज क्या है आज? फितरी जिंदगी, नेचुरल वे ऑफ लाइफ, बैलेंस्ड वे ऑफ लाइफ, म्याना रवि, ना अफरात ना तफरीत, ना इंक्रीज ना डिक्रीज बल्कि म्याना रवि। डू कंसिडर चेंज इज इनएविटेबल, यू कैंट एक्सपेक्ट अ ह्यूमन सोसाइटी फ्री फ्रॉम चेंज। ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी आर इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मीडिया, वी आर ऑल इन ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। आप ऐसे इंसानी मुआशरे का तसव्वुर नहीं कर सकते जहां पर तरक्की नहीं हो रही, जहां प्रोग्रेस नहीं हो रही, जहां पर चीजें इर्तका के मराहिल से नहीं गुजर रही। हाउ यू कैन इमेजिन दिस? ह्यूमंस कैन बी स्टेगनेंट, रुके हुए तो नहीं रह सकते ना, इंसानी मुआशरा तो बढ़ता चला जा रहा है हर शोबे में, कम्युनिकेशन के शोबे में, हर शोबे में कितनी तरक्की हो रही है। तो साइंस की ये सारी तरक्की हमारे फायदे के लिए भी है, इसमें नुकसानात भी होते हैं। फ्रिज इजाद हुआ, 1995 में मोबाइल फोन आ गया, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में इनकलाब आ गया मोबाइल फोन के आने से, इंसान की जिंदगी सहल हुई, तो अच्छी बात है। बहरहाल शरीयत के दायरे में रहते हुए कुरान और हदीस की रहनुमाई में जो सहूलतें हमें मिल रही हैं उसे हासिल किया जाए। लेकिन एक दफा आइए मदनी चैनल के नाजरीन थोड़ा स्कैन करते कि क्या ये सारी चीजें हमें हमारे फितरती कोर्स ऑफ एक्शन से हटा तो नहीं रही, डी ट्रैक तो नहीं हो गए, हद से ज्यादा फास्ट फूड। साइंस तो यही कहती है, सारी तहकीकात साबित कर रही है ये कि दिल की बीमारियों का सबब है हद से ज्यादा फास्ट फूड, सारी तहकीकात यही कह रही है। अब क्या ये फितरी अंदाजे जिंदगी है? प्रोसेस्ड फूड कम से कम खाना चाहिए, दस्तरखान की रोटी, घर में पकी हुई रोटी, चावल, सालन, ये बहुत ही जबरदस्त है। कितने प्यार और शफकत से वालिदा और घर वाले खाना हमारे लिए पकाते हैं, और सफाई का कितना ख्याल रखते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आराम तलब अंदाजे जिंदगी, ये बहुत गलत है। क्या आप जानते हैं यूरोप में अब स्टैंडिंग डेस्क आ गए हैं। स्टैंडिंग डेस्क का मतलब ये कि खड़े होकर काम करो। ओ भाई चल नहीं सकते तो कम से कम खड़े तो रहो, बैठे रहने से ये बेहतर है। सिटिंग डेस्क है ना, मैं सिटिंग डेस्क पे बैठा हुआ इस वक्त, ये स्टैंडिंग डेस्क होगा कि उस पर खड़े होकर काम करो, क्योंकि खड़े होना कम से कम बैठने से बेहतर है। और ये आराम तलब अंदाजे जिंदगी जदीद दौर की जायदाद से बढ़ गया है। बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी नहीं रही, बच्चे जिस्मानी मुशक्कत वाला खेल नहीं खेलते। अब मट्टी से खेलना भी बड़ा फायदेमंद है बच्चों के लिए, यकीन कीजिए। ऐसी रिसर्चेज हैं, मट्टी के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो बच्चे की बॉडी से जब मस होती है ना, बच्चे की बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस आती है, क्रिएटिविटी होती है। बच्चा रंग करता है ना जब किसी चीज को, रंग करना जो कलरिंग होती है, इतनी जबरदस्त एक्सरसाइज है, फोकस होता है इससे, बच्चे में क्रिएटिविटी डेवलप होती है, बच्चे को नई चीज सूझती है, बच्चे का ध्यान उस तरफ लगा रहता है। बच्चा जब किसी खिलौने से खेलता है, क्रिएटिव काम करता है, कोई ब्लॉक से बिल्डिंग बना रहा होता है, कितना तवज्जो होती है उसकी। यकीन करें कि दानिश्वर बंदा भी शायद इतनी तवज्जो नहीं करता होगा जितना बच्चा जब खेल रहा होता है ना, उसकी खेल की तो तवज्जो होती है, कितनी तवज्जो के साथ वो रखता अपनी। लेकिन ये दौर अब तो ऐसे लगता है बड़ा कम हो गया। मोबाइल फोन पर बच्चे बैठे होते हैं, बोलना बच्चे लेट शुरू करते हैं, बच्चों की डेवलपमेंट कम होती है। और दुनिया के बाद तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर ये पता चला है कि कुछ बच्चे 9 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे स्क्रीन पे गुजारते हैं। और इसका नुकसान क्या होता है, बच्चों की दिमागी ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। और हर 10 में से 4 बच्चे आज हमारे स्कूलों में ऐसे आ रहे हैं जिनको बोलने का प्रॉब्लम है, सही तरह बोल नहीं पाते। क्योंकि देखिए मोबाइल के साथ जब वो खेल रहा है तो बात थोड़ी कर रहा है, मोनोलॉग हो रहा है, मोबाइल आगे से जवाब तो नहीं दे रहा ना उसको, वो तो देख ही जा रहा है, बस खेली जा रहा है, उसका मुंह बंद है। जब वो अपने जैसे किसी बच्चे के साथ बात करेगा तो वो बोलेगा, बच्चा जवाब देगा, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी। तो दिस रियल वर्ल्ड हैज नो सब्स्टिट्यूट, इस ओरिजिनल दुनिया का कोई मुतबादिल नहीं है, ये ओरिजिनल दुनिया जो है ये इसका मुतबादिल कोई नहीं होता। तो मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों की ज़हनी ग्रोथ को कम कर रहा है। वी आर पेरेंट्स, वी नीड टू स्टॉप दिस ओवर यूज। ले लें बच्चों के हाथ से मोबाइल, मान लें बात, ले लें बच्चों के हाथ से मोबाइल। उनका जहन अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि वो मोबाइल की वजह से जो असरात पैदा हो रहे हैं उनको झील सके। डिप्रेशन एंग्जाइटी का शिकार हो रहे हैं, फजूल जगहों पर खड़े होकर दुनिया के आगे लाइक्स लेने के लिए सेल्फी लेते हैं, जाने चली जाती हैं। और ऐसे ऐसे खतरनाक हमें चीजें देखने को मिलती हैं, सवारी पे जा रहे हैं, सबसे पीछे बैठा वाला सेल्फी ले रहा है, पहले इतनी हालात खतरनाक है और वो ये काम कर रहा है। तो दिस इज समथिंग वेरी ऑड। लाइक्स लेने के लिए, कमेंट्स लेने के लिए जो ये हरकतें की जाती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जवानी की उस लय के अंदर बच्चे कर रहे हैं और ये फितरी अंदाजे जिंदगी नहीं है। कोशिश कीजिए बच्चों के मोबाइल फोन पर एक खास पाबंदी लगाइए। द गार्डियन की रिसर्च मेरे सामने है, तालीमी इदारे जहां बच्चों पर मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी है वहां पर बच्चों के रिजल्ट्स, बच्चों के नताइज वो ज्यादा अच्छे आते हैं। तो फितरी अंदाजे जिंदगी क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग करें, रंग भरिए, एक्सरसाइज कीजिए, बड़े बच्चों को स्टोरी सुनाइए। ये बड़ा अच्छा तरीकाकार हुआ करता था के बड़े जो थे वालिदैन बच्चों को बिठा के तरबियत करते थे, दादी नानी वो स्टोरी सुनाते थे और ये बड़ा अच्छा तरीका होता है। देखिए स्टोरी सुनाने का फायदा क्या होता है, बच्चे की बड़ी अच्छी ग्रूमिंग होती है। ये एक स्टोरी की बुक है, एग्जांपल लें, ये एक स्टोरी की बुक है, ये भाई बैठा है यहां पर, मैं उसको देखे जाता हूं, लो भाई ये पढ़ के रखो किताब, मैं भी आता हूं। मैंने भाई को किताब पकड़ी, मैं चला गया, वापस आया, क्या पढ़ा भाई बताओ, कहता मुझे तो समझ ही कुछ नहीं आई, इतने मुश्किल लफ्ज थे, मुझे क्या समझ आनी थी, कुछ समझ ही नहीं आई मुझे, ट्विस्टिंग फ्रेजेस थे, डिफिकल्ट वोकैबुलरी थी, थीम मुश्किल थी, मुझे कुछ समझ नहीं आई। अब क्या फायदा हुआ मुझे बताएं, पढ़ता रहा, फायदा कोई नहीं हुआ। इसी तरह बच्चे के लिए भी एक कहानी की किताब एक बंद लॉकर की तरह होती है, एक बंद महल की तरह होती है। ताला चाबी क्या है कि मैं अपने बच्चे को, मैं अपने स्टूडेंट को वो पढ़ के सुनाऊं, क्योंकि मैं उसका बाप हूं, मैं उसका टीचर हूं। जब मैं उसको पढ़ के सुनाऊंगा तो मैं मुश्किल लफ्ज को आसान कर दूंगा, मुझे पता वो बच्चा है उसको समझ नहीं आ रही, मैं मुश्किल लफ्ज को आसान कर दूंगा। जैसे ही मैंने मुश्किल लफ्ज को उसके लिए आसान किया, अब समझिए वो बंद महल का ताला खुल गया और वो डायरेक्ट उस जगह पर पहुंचा, उस मकसद को उसने हासिल किया जो कहानी के अंदर दिया जा रहा था। मुहर्रम के महीने में अपने बच्चों को वो जो करबला में वाकया हुआ हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला का खुद पढ़ के सुनाए, बड़ी ईद पे, ईद उल अजहा पे जो सारा वाकया है उसके पस मंजर पे वो बच्चों को पढ़ के सुनाए। रमजान मुबारक के हवाले से बच्चों को बताएं, उनको समझाएं। जब आप उनको बताएंगे समझाएंगे फिर उनका टेस्ट भी लें, रमजान के मौजू पर तकरीर तैयार करो, ये बच्चे को कहें, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बढ़ेंगी, हौसला भी बढ़ेगा। रमजान में रोजों का सवाब कितना है, ढूंढो अमीर अहले सुन्नत की किताब से और एक तकरीर लिख के आओ। वो 5-10 मिनट की प्रेजेंटेशन तैयार करेगा, उसको असाइनमेंट बनाना आएगी, उसको जिंदगी में प्रोजेक्ट बनाना आएगा, उसको थीम बनानी आएगी, उसकी स्टडीज में ये बात कितना फायदा देगी। जस्ट ट्राई टू सुपरवाइज द नेक्स्ट जनरेशन, आपके पास नई नस्ल है, आप इस नस्ल को सुपरवाइज तो करें। तो स्टोरी टेलिंग तो पूरी दुनिया के अंदर एक बेहतरीन अंदाज है जो कि हमें सिखाया गया है। तो दो अंदाज हमने डिस्कस किए अभी, एक तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है और खाने के अंदर फितरती अंदाज क्या होना चाहिए। याद रखिए खाने में फितरी अंदाज क्या है कि वी शुड ईट प्लेंटी एंड वी शुड ईट वैरायटी। बच्चों को दिन में 800 ग्राम सब्जियां फल जरूर इनके होने चाहिए, गोश्त में एतदाल रखना चाहिए और नमक और चीनी की मिकदार में भी एहतियात करनी चाहिए। देर शुड बी नो एडेड शुगर और सॉल्ट। हमारे खाने में पहले ही इतना नमक और चीनी मौजूद होती है फितरती तौर पे, कुदरती तौर पे, कि ऊपर से छिड़कने की जरूरत नहीं होती। याद रखिए 250 ml की बोतल में, 250 ml की बोतल में 7 चम्मच चीनी होती है, और 7 चम्मच चीनी अगर आप वैसे ही खा लेना तो आपको उल्टी आ जाएगी, लेकिन बोतल पीते हैं उल्टी नहीं आती। क्यों? इसलिए कि बोतल में एक ऐसी चीज भी उन्होंने डाली होती है जो उल्टी ना लेकर आए, यानी ऐसा उसके अंदर सितम दर सितम होता है। और उसकी सबसे बड़ी जो बात है कि उसके अंदर कोई पॉजिटिव बात नहीं है, बोतल पीने का कोई फायदा नहीं है, यही उसका सबसे बड़ा नुकसान है। 100 चम्मच चीनी 250 ml की बोतल में, कैन यू इमेजिन कितना खतरनाक है ये। जस्ट ट्राई टू सेव योर बॉडी, अपने जिस्म की हिफाजत कीजिए। फितरी अंदाजे जिंदगी यही है कि बेवक्त ना खाना खाएं, खाने पर खाना ना खाएं। आमतौर पे सवाल यही होता है, कहां जा रहे हैं? खाना खाने। कहां से आ रहे हैं? खाना खा के। आपने खाना नहीं खाया? मैंने खा लिया, चले आपके साथ फिर खा लेता हूं। व्हाट यू आर डूइंग, ये आपका जिस्म है, आप उसका ख्याल करें वो किस तरीके से चैनलाइज्ड होगा। ये तो अल्लाह का शुक्र है रमजानुल मुबारक के महीने में खाने के ऊपर एक चेक आ जाता है और खाने के औकात मुय्यन हो जाते हैं अगर वाकई हम उन औकात में ही खाना खाएं। तो हमारी जिंदगी आज जो लिफ्ट के ऊपर खुद का निजाम के ऊपर गुजरती जा रही है, हमें चाहिए कि वॉकिंग करें। वॉकिंग का क्राइटेरिया सुन लें, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, हफ्ते में 5 दिन 20 मिनट वॉक रोजाना, हफ्ते में 5 दिन 20 मिनट वॉक रोजाना ये करना जरूरी है। ब्रिस्क वॉकिंग, इतना तेज तेज चलें कि जिस्म से पसीना आए, ये रिकमेंडेड है। तो मदनी चैनल के नाजरीन, मैं समझता हूं ये चीजें इतनी आसान नहीं होती, इसके लिए ना कोशिश करनी पड़ती है, अपने अंदर से कमिटमेंट पैदा करनी पड़ती है, और कोई पार्टनर साथ हो ना इसमें, कोई पार्टनर साथ हो तो फिर आसानी हो जाती है, दोनों मिलकर ये काम कर लेते हैं। तो रोजा प्योरली एक नेचुरल लाइफस्टाइल है, और जो हमारा जिस्म इतना ज्यादा बिजी रहता है सारा साल, उसकी रिपेयर के लिए, हीलिंग के लिए, जनरल मेंटेनेंस के लिए यूं समझ लें हमारा जिस्म छुट्टी पे चला जाता है, गोज ऑन वेकेशन, और बड़े आराम से हम ये दिन गुजार लेते हैं रोजे के। मीठे मीठे साईं भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, रमजान मुबारक का महीना बरकतों भरा है, और जो हम फितरी अंदाज जिंदगी की बात कर रहे हैं, बहुत से जानवरों की स्टडीज हमने पढ़ी, वो भी रोजे जैसी कैफियत में आते हैं अपनी जिंदगी को सहल बनाने के लिए, और बहुत से जानवरों के बारे में ये भी तहकीकात हमने पढ़ी कि जब वो रोजे की कैफियत में आते हैं यानी वो खाना नहीं खाते तो उनके अंदर बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो ठीक हो जाती हैं। मीठे मीठे इस टाइम भी और मदरी चैनल के नाजरीन, एक अंदाज यहां पर हम मिट्टी के बर्तन में पकाने का भी डिस्कस करेंगे। क्या आप जानते हैं कि मिट्टी के बर्तन में खाना पकाना कितना ज्यादा बेनिफिशियल है? जब मिट्टी के बर्तन में खाना पकता है तो स्टीम यानी भाप पूरे खाने में सर्कुलेट कर जाती है, वो भाप वो सर्कुलेट करती है और इससे खाने में फैट्स और ऑयल वो कम में पक जाता है। ऑयल क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि खाना गीला हो जाए और वो पकने में आसान हो जाए। तो ये काम मिट्टी के बर्तन में भाप कर देती है, जो ऑयल ने करना होता है। और ये चौके मिट्टी अल्कलाइन नेचर की होती है, तो जब खाना बर्तन में पकता है नेचुरल डिटॉक्स होता है। डिटॉक्स कहते हैं उस अमल को जिस अमल से जहरीले मादे मर जाते हैं। यानी जितनी देर तक वो मिट्टी के बर्तन में पकता रहता है, एक तो भाप घूमती रही, उसने ऑयल को कम कर दिया, और दूसरे नंबर पे उस खाने में जितने मुजर असरात थे, जितने जहरीले जरासीम थे, वो भी जल्दी जल्दी मर जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा फितरी अंदाजे जिंदगी है। और एक और फितरी अंदाजे जिंदगी मैं आपको बताऊं, वो क्या है? इंसानों से मेल जोल, यानी अहमियत इसकी क्या है? देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हैंडशेक। हाथ मिलाकर जो बात की जाए, मतलब मुलाकात करके जो बात की जाए, उसका कोई मुतबादिल नहीं है। आज व्हाट्सएप के ऊपर, मैसेजेस के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर हमारा बहुत ज्यादा जोर है। आयादत हो, ताजियत हो, इत्तलात हो, दोस्तियां हो, सोशल मीडिया के जरिए बढ़ रही हैं। ये अंदाज सही नहीं है, और इस लोनलीनेस से बहुत सी बीमारियां भी हो सकती हैं। और फितरी अंदाजे जिंदगी का एक बहुत बड़ा फीचर मैं आपसे डिस्कस करूं, और वो फीचर है रेस्ट, रेस्टिंग। देखें, आप अपने मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, आईपैड को रिचार्ज करते हैं, आपने अपने आप को कब रिचार्ज किया? यू नीड रिचार्जिंग, और ये रिचार्जिंग रेस्ट से ही होती है। यू नीड प्रॉपर रेस्ट। एक मोबाइल की बैटरी की रिचार्ज करने वाले को अपनी चार्जिंग की जरूरत है। डू यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ स्लोइंग डाउन? क्या आपको इसका अंदाजा है कि थोड़ा सा स्लो हो जाए तो इसके बेनिफिट्स क्या है? थोड़ा स्लो हो जाए, थोड़ा सा स्लो हो। इट सीम्स दैट वी आर लिविंग इन ए सोसाइटी वेयर देयर इज अ ह्यूमन क्राई, गो गो गो, करी जाओ, बस करी जाओ, भागी जाओ, भागी जाओ, एक दो मिनट में नहीं रुकना, पता नहीं क्या हो जाएगा। दिस इज नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है। हम मानते हैं कि जिंदगी हाथ पे हाथ धरे रखने का नाम नहीं है, काम तो करना ही है। यू मस्ट बी केपेबल टू बी यूज, इफ समवन कैनॉट यूज यू, यू आर यूजलेस, बट डोंट अलाउ द पीपल टू ओवर यूज यू। बिला शुबा आप इस्तेमाल होंगे, अगर आप इस्तेमाल नहीं हो सकते तो आपका मतलब जिंदगी में क्या कर रहे हैं आप, फिर इस दुनिया में आपका क्या रोल है? लेकिन कोई आपको हद से ज्यादा इस्तेमाल ना करे, इस चीज को आपने देखना, चाहे वो आपका काम क्यों ना हो, एक लिमिट होती है। अच्छे अंदाज से रिश्तों को निभाएं, और थके हुए दिमाग ने जो काम 3 घंटे में करना है, ताजा दिमाग वही काम 1 घंटे में कर देगा। सो यू नो, यू शुड नो द इंपॉर्टेंस ऑफ स्लोइंग डाउन। सो इनकॉर्पोरेट रेस्ट इवन इन द क्रेजियस्ट लाइफस्टाइल। हम इसको यूं कर लेते हैं, इनकॉर्पोरेट रेस्ट इवन इन द बिजिएस्ट लाइफस्टाइल। शदीद तरीन मसरूफियत भी हो, रेस्ट उसमें जरूर करें। यह फितरी अंदाजे जिंदगी है। बहुत से जॉब कर रहे हैं, फिर भी एक नई जॉब ढूंढ लेते हैं। बहुत से कारोबार पहले जारी हैं, फिर उसमें एक और नया कारोबार शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, ऐसा ना हो कि यह बहुत ज्यादा काम 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 काम, बिल्कुल भी नहीं आराम, यह अंदाज कहीं बीमार ना कर दे। कभी कभार ऐसा तय कर लिया करें कि बस टुडे विल बी अ रेस्ट डे, आज के दिन सिर्फ रेस्ट करेंगे, बैठ के मदनी चैनल देखेंगे, बैठकर इंशाल्लाह अज़्ज़वजल सोशल मीडिया पर दावत इस्लामी की पोस्ट्स पढ़ेंगे, दावत इस्लामी के मेन पेज को विजिट करेंगे, दावत इस्लामी की तरफ से जो वीडियोज आई हैं उनको देखेंगे। बिल्कुल आज का दिन बैठकर सुकून के साथ रेस्ट फेज में जाके आराम भी करेंगे, और खूब खूब मदनी चैनल के सिलसिले देखेंगे। एक इस्लामी मैंने कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाई, कहने लगे मैंने एक दिन ये तय किया मैं सिर्फ मदनी चैनल के सामने बैठ जाऊंगा, और जितनी बार दुरूद व सलाम पढ़ाया जाएगा ना, मैं उतनी बार उसका जवाब देता जाऊंगा, और मैं गिनूंगा कि मदनी चैनल की बरकत से कितनी दफा दुरूद पाक मैंने पढ़ लिया। देखिए सलात व सुन्नत का कैसा पैगाम दावत इस्लामी आज आम कर रही है। दावत इस्लामी की बरकत से ताजिरों में, तालीमी इदारों में, हस्पतालों में, पूरी दुनिया के ममालिक के अंदर दावत इस्लामी पूरी दुनिया में पेनेट्रेट कर गई है। हर हर जगह पे, ऑफिस में, हर हर जगह पे सलात व सुन्नत का ये काम बढ़ता चला जा रहा है। ये अमीर अहले सुन्नत के डिटर्मिनेशन की वजह से, ये अमीर अहले सुन्नत की उस थीम की वजह से, ये अमीर अहले सुन्नत की हार्ड वर्किंग की वजह से, ये अमीर अहले सुन्नत के तकवे की बरकत है, ये अमीर अहले सुन्नत जो टीम बनाई उस टीम की एफिशिएंसी की बरकत है, ये मरकजी मजलिस शूरा का फैजान है, ये यकीनन दावत इस्लामी का स्टाइल है। कि आज मदनी काम हर हर जगह पेनिट्रेट करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। दावत इस्लामी का पैगाम ऐसा है जो हर मुआशरे के सेगमेंट को एड्रेस करता है। हमारे मदारिस हैं जिसमें बच्चे हिफ्ज़ो नाज़रा कुरान की सआदत हासिल करते हैं, जामियात हैं जहां पे दरस निजामी यानी आला डिग्री जो है दरस निजामी की रिलीजियस एजुकेशन इस्लामिक एजुकेशन की दी जाती है, और स्कूल हैं दारुल मदीना, उनमें बच्चे दाखिला लेते हैं, पढ़ते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम है। आइए आप भी दावत इस्लामी के मदनी महोत्सव बस्ता हो जाइए और नियत कर लीजिए, या तो दावत इस्लामी किसी इदारे में आके तालीम हासिल करेंगे, या इस साल रमजान मुबारक की बरकत से यह नियत कर लीजिए कि किसी ना किसी ऑनलाइन कोर्स में दाखिला ले लेंगे अगर आप वाकई क्लासरूम लर्निंग नहीं कर सकते। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें दावत इस्लामी और अमीर सुन्नत के साथ वाबस्तगी अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।